एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। सभी श्रोताओं का आज की इस खास चर्चा में बहुत स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जो जितनी दिलचस्प है उतनी ही शायद जरूरी भी।
अच्छा, कौन सी किताब है
ये? है महान खगोल शास्त्री और विज्ञान संचारक कार्ल सेगन की क्लासिक पुस्तक द डेमन हॉन्टेड वर्ल्ड, साइंस एज अ कैंडल इन द डार्क।
ओ हाँ, द डेमन हॉन्टेड वर्ल्ड, मतलब एक ऐसी दुनिया जिस पर वहम और डर के राक्षसों का साया है और विज्ञान उसमें एक मोमबत्ती की तरह।
बिल्कुल, यही मतलब है।
और ये किताब आज के दौर में तो शायद मुझे लगता है पहले से भी ज्यादा जरूरी हो गई है ना?
हाँ बिल्कुल, क्यों कह रहे हैं आप ऐसा?
देखिए ना, हम एक तरफ तो टेक्नोलॉजी से घिरे हैं, स्मार्टफोन, इंटरनेट, एआई, लगता है विज्ञान ने सब कुछ बदल दिया है।
जी
लेकिन दूसरी तरफ
हाँ, समाज में तर्कहीन विश्वास, अंधविश्वास और जिसे हम कहते हैं ना सूडो साइंस या छद्म विज्ञान,
हाँ हाँ
वो भी खूब फल फूल रहा है। ये बड़ा अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन है।
बिल्कुल।
सेगन इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि विज्ञान सिर्फ लैब में होने वाला कोई काम या बस तथ्यों की लिस्ट नहीं है, बल्कि ये सोचने का, दुनिया को समझने का एक तरीका है, एक अनुशासित तरीका जो हमें सच के ज्यादा करीब ले जाता है।
अच्छा,
और इस किताब में वो हमें सिखाते हैं कि ये तरीका क्यों जरूरी है और इसे कैसे इस्तेमाल करें, खासकर तब जब चारों तरफ इतनी भ्रामक जानकारी फैली हो।
हाँ, आजकल तो बहुत है।
ये किताब पूछती है कि इस वैज्ञानिक युग में भी लोग आसानी से बहकावे में क्यों आ जाते हैं और इसके खतरे क्या हैं।
तो इससे पहले कि हम किताब की गहराइयों में उतरें, कार्ल सेगन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। वो कौन थे और उनकी बात में इतना वजन क्यों है? जरूर। कार्ल सेगन 1934-1996, वो एक अमेरिकी खगोल शास्त्री थे, ब्रह्मांड विज्ञानी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी थे, लेकिन उनकी असली पहचान बनी एक असाधारण विज्ञान संचारक के रूप में।
हाँ, विज्ञान संचारक के तौर पर तो बहुत मशहूर थे वो।
उनमें गजब की काबिलियत थी। वो ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों को, मुश्किल वैज्ञानिक आइडियाज को आम लोगों के लिए एकदम आसान,
दिलचस्प
दिलचस्प और यहां तक कि पोएटिक, काव्यात्मक बना देते थे।
हाँ, मुझे याद है उनकी 1980 की टीवी सीरीज कॉस्मोस, ए पर्सनल वॉयज, उसने तो मतलब पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी।
बिल्कुल, लाखों लोगों को विज्ञान से प्यार हो गया था उसकी वजह से।
और उनकी किताबें भी, जैसे द ड्रैगन्स ऑफ ईडन, जिसके लिए उन्हें पुलित्जर पुरस्कार मिला था।
हाँ, पुलित्जर मिला था। और उनका नॉवेल कॉन्टैक्ट, जिस पर फिल्म भी बनी।
हाँ, वो भी देखिए, बहुत प्रभावशाली थी ये सब चीजें।
सेगन की खासियत ये थी कि वो सिर्फ जानकारी नहीं देते थे, वो विज्ञान के प्रति एक जुनून जगाते थे। वो साइंस की प्रक्रिया को, उसकी छानबीन करने की आदत को,
मेथड को,
हाँ, उसकी सीमाओं और उसकी ताकत को अंदर तक समझते थे। उन्होंने अपने करियर में विज्ञान के नाम पर होने वाले धोखे, यूएफओ के किस्से, ज्योतिष, न जाने कितने ही छद्म वैज्ञानिक दावों को बहुत करीब से देखा था।
अच्छा, ये सब उन्होंने खुद देखा था।
बिल्कुल, यही अनुभव उन्हें ये किताब लिखने के लिए एकदम सही व्यक्ति बनाता है। वो विज्ञान और इंसानियत दोनों से गहरा लगाव रखते थे और मानते थे कि सही सोच ही मतलब हमें बचा सकती है।
तो ये किताब द डेमन हॉन्टेड वर्ल्ड असल में है किसके बारे में, इसका सार क्या है?
आप इसे वैज्ञानिक शक, मतलब साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म, और आलोचनात्मक सोच यानी क्रिटिकल थिंकिंग का एक तरह का मैनिफेस्टो या गाइडबुक समझ सकते हैं।
गाइडबुक?
हाँ, सेगन का मकसद है हमें वो दिमागी औजार देना जिनसे हम असली विज्ञान और सुनने में आकर्षक लगने वाले लेकिन खोखले दावों, जैसे छद्म विज्ञान, के बीच फर्क कर सकें।
और उनका मानना था कि हम इंसान शायद स्वाभाविक रूप से आसान जवाबों और सुकून देने वाली कहानियों की तरफ खींचते हैं।
हाँ, ये तो है।
हमारे सोचने के तरीके में कुछ कमजोरियां, या वो जिन्हें कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस, पूर्वाग्रह होते हैं।
जैसे?
जैसे हर चीज में कोई पैटर्न या मतलब ढूंढ लेना, भले ही वो वहां ना हो, जिसका फायदा फिर चालाक लोग, नेता, या यहाँ तक कि हमारी अपनी गलतफहमियां उठा लेती हैं।
अच्छा,
हाँ, ये बात तो सही है।
यहीं पर विज्ञान एक मोमबत्ती की तरह काम करता है। ये हमें सिखाता है कि अपनी मान्यताओं पर सवाल कैसे उठाएं, सबूतों के तराजू पर उन्हें कैसे तौलें, और धीरे धीरे, सावधानी से, हकीकत की ज्यादा साफ तस्वीर तक कैसे पहुंचें।
तो ये मोमबत्ती अज्ञानता, डर और अंधविश्वास के राक्षसों को दूर भगा सकती है।
हाँ, और ये राक्षस कोई असली भूत प्रेत नहीं, नहीं नहीं बल्कि हमारे अपने मन के वहम और डर हैं।
सही।
तो चलिए अब किताब के कुछ मुख्य विचारों और तर्कों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सेगन हमें किस तरह की बौद्धिक यात्रा पर ले जाते हैं?
सेगन शुरुआत करते हैं ये मानकर कि अजीबोगरीब अलौकिक लगने वाली चीजों में एक स्वाभाविक आकर्षण होता है, है ना?
हाँ, रहस्य किसे पसंद नहीं।
बिल्कुल। लेकिन फिर वो हमें दिखाते हैं कि इन दिलचस्प लगने वाले दावों, जैसे UFO देखना, एलियंस द्वारा अपहरण या भूत प्रेत के अनुभव, इनकी जांच वैज्ञानिक नजरिए से कैसे की जाए।
अच्छा, तो वो इन दावों को सीधे खारिज नहीं करते, ये नहीं कहते कि ये सब बकवास है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सहानुभूति रखते हैं कि ऐसे अनुभव लोगों को बहुत असली लग सकते हैं, लेकिन वो बारीकी से समझाते हैं कि कैसे हमारी याददाश्त धोखा दे सकती है, जिसे कहते हैं फैलेबल मेमोरी।
अच्छा।
कैसे नींद की एक अवस्था, जिसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, जब दिमाग जागा हो पर शरीर हिल ना पाए, वो अजीब अनुभव पैदा कर सकती है।
और वो मंगल ग्रह पर चेहरा देखने जैसी घटनाओं का भी उदाहरण देते हैं।
पैरिडोलिया।
हाँ, पैरिडोलिया मतलब बेतरतीब चीजों में पैटर्न देखना, ये समझाने के लिए कि हमारा दिमाग मतलब निकालने के लिए कितना उतावला रहता है।
ये तो दिलचस्प है। मतलब उन अनुभवों की मनोवैज्ञानिक और शारीरिक वजहें तलाशते हैं जिन्हें लोग अक्सर सुपरनैचुरल मान लेते हैं।
हाँ, और वो ऐतिहासिक तुलना भी करते हैं, जैसे पुराने जमाने में लोगों को राक्षसों या डाइनों के दिखने के किस्से होते थे।
हाँ, होते थे।
और आजकल एलियन अपहरण की कहानियां, वो बताते हैं कि शायद ये अलग अलग दौर की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन इनके पीछे काम करने वाले मनोवैज्ञानिक कारण काफी मिलते जुलते हो सकते हैं।
अच्छा, तो ये पैटर्न एक तरह का। फिर सेगन हमें वो औजार देते हैं जिनकी बात आप कर रहे थे, जिनसे हम खुद सच और झूठ में फर्क कर सकें। बिल्कुल, यहीं पर किताब का सबसे मशहूर हिस्सा आता है, उनकी बकवास का पता लगाने वाली किट, यानी बलोनी डिटेक्शन किट।
बकवास डिटेक्शन किट, नाम तो बढ़िया है, ये कोई असली किट है?
नहीं नहीं, असली किट नहीं, बल्कि सोचने के कुछ सिद्धांत हैं। इससे पहले वो एक मजेदार उदाहरण देते हैं, मेरे गैरेज में ड्रैगन।
हाँ, ये मैंने सुना है, कोई कहता है कि उसके गैरेज में आग उगलने वाला ड्रैगन है।
हाँ, और जब आप देखने जाते हैं तो वो कहता है ड्रैगन अदृश्य है।
अच्छा।
आप छूना चाहें तो कहता है उसका कोई शरीर नहीं है, आप गर्मी महसूस करना चाहें तो कहता है उसकी आग ठंडी है।
अरे वाह।
आप जमीन पर निशान ढूंढें तो कहता है वो हवा में तैरता है।
सही पकड़ा।
तो सेगन पूछते हैं, ऐसे ड्रैगन में और कोई ड्रैगन न होने में आखिर फर्क क्या है? सोचने वाली बात है।
यहीं से वो सिद्धांत आता है मिथ्याकरणीयता का, यानी फॉल्सिफायबिलिटी।
फॉल्सिफायबिलिटी यानी जिसे गलत साबित किया जा सके।
बिल्कुल, इसका मतलब है कि कोई दावा वैज्ञानिक तभी माना जा सकता है जब उसे गलत साबित करने का कोई तरीका सोचा जा सके। अगर किसी दावे को गलत साबित करने का कोई रास्ता ही नहीं है
तो वो विज्ञान के दायरे से बाहर है।
हाँ, वो अर्थहीन है। जैसे अगर मैं कहूँ कल बारिश होगी, तो इसे कल जांचा जा सकता है, ये गलत साबित हो सकता है।
सही।
लेकिन अगर मैं कहूँ एक अदृश्य शक्ति हमेशा मेरी रक्षा करती है, तो इसे गलत साबित करने का कोई तरीका नहीं है।
ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इस बकवास डिटेक्शन किट में और क्या क्या है? ये तो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आ सकती है, खासकर आज के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जमाने में।
हाँ बिल्कुल, इसमें कुछ जरूरी नियम है, जैसे एक तो है तथ्यों की स्वतंत्र पुष्टि।
मतलब
ये कि क्या कोई दावा सिर्फ एक ही स्रोत से आ रहा है या कई अलग अलग स्रोत भी वही बात कह रहे हैं, क्या सबूतों को परखा जा सकता है।
ये जरूरी है। और
करने का मौका मिल रहा है या सिर्फ एक ही नजरिए को हवा दी जा रही है?
हाँ, ये भी जरूरी है, सिर्फ एक तरफ की बात सुनना ठीक नहीं।
तीसरा, अथॉरिटी पर सवाल। सिर्फ इसलिए किसी बात को सच ना मान ले कि कोई बड़ा आदमी या एक्सपर्ट कह रहा है।
हाँ, एक्सपर्ट भी गलत हो सकते हैं।
बिल्कुल, सबूत ज्यादा मायने रखता है, पदवी नहीं। फिर कई परिकल्पनाएं, क्या किसी घटना के सिर्फ एक ही स्पष्टीकरण पर अड़े या कई संभावित वजहों पर विचार करें।
अच्छा, मतलब ऑप्शंस खुले रखें।
हाँ, और एक और है ओकम का रेजर।
ओकम का रेजर, ये क्या है?
ये एक सिद्धांत है कि अगर किसी चीज को समझाने के लिए दो बराबर अच्छी व्याख्याएं हैं, तो आमतौर पर वो वाली चुननी चाहिए जो ज्यादा सरल हो, जिसमें कम नई मान्यताएं बनानी पड़े।
अच्छा, सिंपल इज बेटर टाइप।
हाँ, जरूरी नहीं कि सरल हमेशा सही हो, पर यह सोचने की अच्छी शुरुआत है।
इसके साथ ही सेगन कुछ आम तार्किक भ्रांतियों, लॉजिकल फैलेसीज के बारे में भी बताते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए।
जैसे वो एड होमिनिम वाला तर्क,
हाँ।
जब आप मुद्दे पर बात करने के बजाय सामने वाले व्यक्ति पर ही हमला करने लगते हैं,
अरे तुम क्या जानो
कहकर,
बिल्कुल, या अज्ञानता से अपील, ये कहना कि चूंकि किसी दावे को गलत साबित नहीं किया गया है इसलिए वो जरूर सच होगा।
हाँ, ये भी खूब होता है। या फिर आंकड़ों का गलत इस्तेमाल, या ऐसी तुलनाएं करना जिनका कोई सिर पैर न हो, नॉन सेक्विटर। ये सब धोखे की तरकीबें हैं जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए।
ये तो वाकई सोचने के बड़े काम के औजार हैं। लेकिन सेगन सिर्फ ये तरीके बताकर नहीं रुकते, वो ये भी दिखाते हैं कि जब समाज इन तरीकों को भूल जाता है तो क्या भयानक नतीजे हो सकते हैं।
बिल्कुल, वो यूरोप में मध्यकाल में हुए डायन शिकार विच हंट्स का रोंगटे खड़े कर देने वाला विश्लेषण करते हैं। दिखाते हैं कि कैसे अंधविश्वास, डर, सामाजिक तनाव और कानूनी प्रक्रिया की कमी, जैसे टॉर्चर करके झूठे कबूलनामे करवाना, इसने हजारों बेगुना लोगों, खासकर औरतों की जान ले ली। ये एक चेतावनी है कि तर्क और सबूत को छोड़ देने का अंजाम क्या हो सकता है।
बाप रे, और वो इसकी तुलना आज के दौर की कुछ घटनाओं से भी करते हैं।
हाँ, वो आधुनिक मॉरल पैनिक्स से इसकी तुलना करते हैं।
मॉरल पैनिक्स मतलब जब समाज किसी काल्पनिक खतरे को लेकर डर जाता है।
हाँ।
जैसे 1980-90 के दशक में अमेरिका में रिकवर्ड मेमोरी थेरेपी का चलन था। इसमें थेरेपिस्ट लोगों को उनके बचपन के दबे हुए दुर्व्यवहार की यादें दिलाने का दावा करते थे, अक्सर बिना किसी ठोस सबूत के।
ओ, बिना सबूत के।
हाँ, और इससे कई परिवार बर्बाद हो गए। सेगन का कहना है कि असली रोमांच और आश्चर्य इन झूठे दावों में नहीं बल्कि ब्रह्मांड को वैज्ञानिक नजरिए से जानने में है।
और किताब के आखिर में वो विज्ञान और लोकतंत्र के रिश्ते पर भी जोर देते हैं।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सेगन तर्क देते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वैज्ञानिक सोच वाले नागरिक जरूरी हैं।
क्यों? क्योंकि जो लोग आलोचनात्मक ढंग से नहीं सोच सकते, सबूतों की परवाह नहीं थरते, उन्हें नेता और सत्ता आसानी से बहका सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं।
हाँ, ये तो सही बात है।
वो ऐसी शिक्षा की वकालत करते हैं जो बच्चों को सिर्फ तथ्य रटाने के बजाय कैसे सोचना है सिखाए, उनकी जिज्ञासा को जगाए रखे। किताब का अंत इसी उम्मीद भरे संदेश के साथ होता है कि विज्ञान अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद अंधेरे से लड़ने के लिए हमारी सबसे अच्छी मोमबत्ती है।
इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें वाकई उभर कर आती हैं। पहली और शायद सबसे जरूरी कि विज्ञान सिर्फ कुछ विषयों का नाम नहीं बल्कि सोचने का एक तरीका है।
हाँ, एक मेथड है।
ये शक करने, सवाल पूछने, सबूत तलाशने और जरूरत पड़ने पर अपनी राय बदलने का एक अनुशासित तरीका है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम आने वाले सोच है।
दूसरी बात, सेगन की बकवास पहचान किट, बलोनी डिटेक्शन किट, वाकई एक लाइफ स्किल है।
लाइफ स्किल, बिल्कुल।
ये हमें सिर्फ विज्ञान समझने में ही नहीं बल्कि विज्ञापनों को परखने, नेताओं के वादों को जांचने, सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों से बचने, मतलब हर तरह की सूचना को समझने में मदद करती है। सोचिए, अगली बार कोई अविश्वसनीय दावा व्हाट्सएप पर आए,
हाँ,
तो ये किट कितनी काम आएगी।
बिल्कुल। तीसरा, छद्म विज्ञान और अलोकतांत्रिक सोच में एक खतरनाक रिश्ता है।
ये कैसे?
दोनों में सबूतों को नकारा जाता है, सवाल पूछने वालों को दबाया जाता है और किसी करिश्माई व्यक्ति या विचार पर आंख मूंद कर भरोसा किया जाता है। एक जागरूक नागरिक बनने के लिए आलोचनात्मक सोच बहुत जरूरी है।
हाँ, ये तो हमने अपने आसपास भी देखा है कि कैसे अफवाहें या बिना सोचे समझे मान ली गई बातें समाज में तनाव पैदा कर सकती हैं।
बिल्कुल।
चौथी बात जो मुझे छू गई वो है सेगन की इंसानी जरूरत के प्रति सहानुभूति। वो समझते हैं कि लोग क्यों आसान जवाबों या चमत्कारों की ओर खिंचते हैं। अक्सर ये मुश्किल समय में सुकून, उम्मीद या चीजों पर काबू होने का एहसास देते हैं।
हाँ, एक कंफर्ट मिलता है शायद।
बिल्कुल। लेकिन वो तर्क देते हैं कि विज्ञान हमें ज्यादा सच्चा और टिकाऊ सुकून दे सकता है ब्रह्मांड की विशालता और हमारे अपने अस्तित्व के आश्चर्य को समझकर।
और पांचवा, ये के शक करना और हैरान होना, ये दो अलग बातें नहीं हैं
बल्कि साथ ही हैं।
हाँ, बल्कि जब हम झूठे दावों पर शक करना सीखते हैं तभी हम असली आश्चर्य के लिए जगह बना पाते हैं। विज्ञान जब अंधविश्वास के पर्दे हटाता है तो दुनिया कम नहीं बल्कि और ज्यादा अद्भुत नजर आती है, चाहे वो तारों का बनना हो या जीवन का विकास।
सही कहा। किताब में ऐसी कई पंक्तियां हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ खास बातों को फिर से याद करते हैं जो सेगन के विचारों का निचोड़ है।
हाँ, कुछ कोट्स। सबसे पहली और शायद सबसे मशहूर बात, असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूतों की जरूरत होती है।
एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्रॉर्डिनरी एविडेंस।
हाँ, ये तो बहुत फेमस है। मतलब जितनी बड़ी और अविश्वसनीय बात कोई कह रहा है उसे मानने के लिए उतने ही मजबूत सबूत चाहिए। बिल्कुल, कोई कहे कि उसने चाय पी तो ठीक है, पर कोई कहे कि उसने उड़न तश्तनी से बात की तो भाई सबूत तो बहुत पक्का लाना पड़ेगा।
सही है। दूसरी, खुला दिमाग रखना अच्छी बात है, पर इतना भी नहीं कि दिमाग ही गिर जाए।
हाँ, ये बढ़िया है।
यानी नए विचारों का स्वागत जरूर करें, लेकिन इतने भोले भी ना बने कि हर कोई आपको कुछ भी यकीन दिला दे। खुले दिमाग के साथ साथ एक फिल्टर भी जरूरी है।
बैलेंस जरूरी है।
तीसरी, वो ड्रैगन वाले उदाहरण का सार, एक अदृश्य बिना शरीर वाले तैरने वाले ड्रैगन जो बिना गर्मी वाली आग उगलता है, और कोई ड्रैगन ना होने में आखिर फर्क क्या है?
हाँ।
What's the difference between an invisible, incorporeal, floating dragon who spits heatless fire and no dragon at all?
ये वही मिथ्याकरणीयता वाली बात है। अगर किसी दावे को जांचने या गलत साबित करने का कोई तरीका ही नहीं है तो वो दावा बेमानी है।
सही। चौथी,
ब्रह्मांड को वैसा ही समझना कहीं बेहतर है जैसा वो वास्तव में है, बजाय इसके कि भ्रम में बने रहें, चाहे वो कितना भी संतोषजनक और आश्वस्त करने वाला क्यों ना हो।
सच शायद हमेशा मीठा ना लगे, पर झूठे दिलासे में जीने से बेहतर है हकीकत को स्वीकार करना।
बिल्कुल।
और आखिर में ये बात आज की दुनिया पर कितनी सटीक बैठती है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर पूरी तरह निर्भर है, जिसमें शायद ही कोई विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ जानता हो।
We live in a society exquisitely dependent on science and technology, in which hardly anyone knows anything about science and technology.
ये हमारी अज्ञानता और हमारी निर्भरता के बीच का खतरनाक फासला दिखाता है।
हाँ, हम सब AI की बात करते हैं, पर कितने लोग समझते हैं कि ये कैसे काम करता है? या अज्ञानता हमें कमजोर बनाती है?
तो सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है, हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए, सबसे पहले तो सूचना के इस सैलाब में न्यूज, सोशल मीडिया, टीवी, व्हाट्सएप, हर तरफ से जानकारी आ रही है।
हाँ, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। बिल्कुल।
यहाँ सेगन की बकवास पहचान किट एक लाइफ जैकेट की तरह है। कोई भी खबर या दावा मिले तो रुक कर पूछें, ये आ कहाँ से रहा है? क्या कोई और भी यही कह रहा है? क्या इसमें सिर्फ भावनाएं भड़काने की कोशिश है या कोई तर्क भी है? सबूत क्या है?
बिल्कुल। दूसरा, सेहत और पैसे से जुड़े फैसलों में चमत्कारी इलाजों, वजन घटाने के जादुई नुस्खों या रातों रात अमीर बनाने वाली स्कीम्स,
ओ हाँ, ये तो बहुत आते हैं,
इनसे सावधान रहें। असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत वाला नियम याद रखें। देखें कि कहीं बात करने वाला तर्कों की बाजीगरी तो नहीं कर रहा।
एक नागरिक के तौर पर भी ये सोच जरूरी है, चाहे वो जलवायु परिवर्तन का मुद्दा हो या वैक्सीन जैसी पब्लिक हेल्थ पॉलिसी या कोई नई टेक्नोलॉजी।
हाँ।
बिना सोचे समझे राय बाड़ने चल जाए, जानकारी और सबूतों के आधार पर अपनी समझ बनाएं। नेताओं के भाषणों में दावों और दलीलों को आलोचनात्मक नजर से देखें।
और अपनी निजी जिंदगी में भी अपनी सोच को साफ रखने की कोशिश करें। क्या आप किसी बात को इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो सच है, या इसलिए कि आप उसे सच मानना चाहते हैं?
ये मुश्किल सवाल है।
हाँ, अपने पूर्वाग्रहों को पहचानने की कोशिश करें। हम सबके अंदर होते हैं, बस उन्हें पहचानना सीखना होता है।
और हाँ, अगर आप माता पिता या शिक्षक हैं तो बच्चों को क्या सोचना है रटाने से ज्यादा कैसे सोचना है सिखाएं।
बिल्कुल, सवाल पूछना सिखाएं।
हाँ, उन्हें सवाल पूछने, सबूत मांगने और चीजों को यूं ही ना मान लेने के लिए प्रोत्साहित करें। उनकी जिज्ञासा को सही दिशा दें।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे अहम बात निकल कर आई वो ये है कि वैज्ञानिक या आलोचनात्मक सोच कोई ऐसी खास चीज नहीं है जो सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए बनी हो। ये तो हम सबके लिए है, आज की इस उलझी हुई दुनिया में रास्ता खोजने का एक जरूरी औजार।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प ये रहा कि सेगन शक करने को, सवाल उठाने को किसी नकारात्मक या रूखी चीज की तरह नहीं देखते, बल्कि वो इसे दुनिया को और गहराई से और सच्चाई से जानने का एक सकारात्मक तरीका मानते हैं।
हाँ, एक एम्पावरिंग तरीका।
बिल्कुल। ये वाकई अज्ञानता और डर के अंधेरे में एक मोमबत्ती की रोशनी की तरह है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए 71 फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।